ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఇస్ విశాల్ డైమండ్ హాల్ మే బే హే బాబా కే ఇతనే సారే బచ్చే ఆపస్ మే ఏక దూసరే కో దేఖకర్ బహుత్ ప్రసన్న హో రహే హై. ఐసే లగ్ రహా హై కే సమయ యహీ రుక్ జాయే ఔర్ యే హమారా జో హై జిస్కో కుంభ కా మేలా కహే యా బ్రాహ్మణో కా ఇత్నా బడా సంగఠన్ కహే యే ఐసే చల్తా రహే తో యహీ స్వర్గ హై. లౌకిక లోగ్ ఆకే కహతే హై యహీ స్వర్గ హై తో హమ్ భీ అనుభవ కర్తే హై యహీ స్వర్గ హై. యహాన్ పర్ తో స్వర్గ హై హీ కింతు థోడే సమయ కే బాద్ హమకో బాహర్ జానా పడతా హై. तो जब बाहर जाते हैं तो बहुत कंट्रास्ट दिखाई देता है. तो यही सोचते हैं कि भाई ऐसी दुनिया हो जिसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो या देवता ही देवता हो तो फिर स्थायी तौर पे हम ये आनंद ले सकें. तो हमारे परम प्रिय परम पिता को हमारे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि वो हमारी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए सारी दुनिया की अन्य आत्माओं को शरीरों से मुक्त करके उनको परम धाम में कहो तो टांग देते हैं, लटका देते हैं कि वहां बैठे रहो, मेरे बच्चे नीचे हैं, वो राज कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो. जब हम पूरा अपना आधा कल्प का राजभाग भोग लेते हैं तब एक आत्मा को पहली को अलाउ किया जाता है, अब तुम भले नीचे जाओ. तो इतना बाबा को हमसे प्यार है कि ना सिर्फ हमें पढ़ाकर वर्षा देते हैं लेकिन उसको कोई डिस्टर्ब ना करे उसका भी प्रबंध बाबा कर रहे हैं. आज मैं सोच रहा था कि ये समय की पुकार बहुत पॉपुलर टॉपिक हो गया है. समय की पुकार, समय की पुकार. आखिर समय क्या बोलता है, है? एक तो होता है बोलना, एक होता है पुकारना ताकि अच्छी तरह से दूसरा आदमी सचेत हो जाए. तो भक्ति मार्ग में भी समय की पुकार हम अपने आप को ही सुनाते रहे. वो क्या थी, उठ जाग. आप सबको पता ही है भक्ति के संस्कार सबके अंदर है. उठ जाग मुसाफिर भोर भई. अब रैन कहां जो सोवत है. सारा गीत ना सुन के जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो. ये समय की पुकार हम भक्ति में प्रार्थना के तौर पे नित्य प्रति ही करते आए हैं. अपने को सुनाते थे और बस. लेकिन इसका एक एक शब्द जो है आज हमें बाबा के ज्ञान मिलने के बाद उसका अर्थ पता लगता है. जैसे हम मूर्तियों के रूप में स्थापित हो गए थे, अब बाबा उन मूर्तियों को पुनः जीवित करते हैं, सुरजीत करते हैं, चैतन्य करते हैं. इसी प्रकार इस समय की पुकार को अब बाबा ने हमें कहा है इसको प्रैक्टिकल रूप दो. पहली बात उठ जाग, इसका मतलब कि सोया हुआ है. फिर मुसाफिर, ऐसे नहीं जाग के वहीं बैठ जा, तू मुसाफिर है, तुझे चलना है. तो ये सफर भी دنیا میں کسی کو پتا نہیں کون سا سفر ہے جس کے مسافر بول دیا گیا ہے کہ جاگ کر کے چل. اور پھر بھور بھائی, اب امرت یعنی صبح ہو گئی ہے, کون سی صبح ہو گئی ہے اور جس میں تمہاری مسافری چلتی رہنی چاہیے. اور دیکھ اب رات نہیں رہی, سو مت. اور پھر جو پراپتی ہونی ہے, ورثہ ملنا ہے, کس کو ملے گا؟ جو جاگے گا سو پائے گا, جو سوئے گا سو کھوئے گا. اب ہم اسے آج کی ڈیٹ میں اپنے سامنے یہ سین لائیں, کوئی بھی کاریہ کسی بھی گتی سے چل رہا ہو, اس گتی سے چل رہا ہے, اب اس کی گتی کو تیز کرنا ہو تو کون سی ایسی چیتاونی ہے جو ویکتی کو چکنا کر کے کہ اس کو تیز کر؟ اور وہ ہے سمے. جب پچھلے وقتا بھاشن کر رہے تھے تو بیچ میں کہہ رہے تھے سمے کی سیما ہے نا, تو سمے کی سیما ہمیشہ رہی ہے. جو سمے ستیوگ میں تھا, جو وہاں کی سین سینریاں تھی, جو وہاں ستوں پر دھانتا تھی, آج نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, ایسے ہی بابا تو کہتے ہیں ڈے بائی ڈے, دن پرتی دن کیا ہر گھڑی سمے کا سین بدلتا رہتا ہے. لیکن ایک سمے وہ آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی سمے اس کے بعد ریپیٹ ہو سکتا ہے, آگے نہیں چل سکتا, جس کو کہتے ہیں سمپورن یگیہ, سمپورن آہوتی. بھکتی مارگ میں بھی جب یگیہ کرتے تھے تو جو سمگری اس میں ڈالتے ہیں وہ کرچھی سے ہے, یگیہ کی اگنی جلتی رہتی تھی, اس میں گھی ڈالتے رہتے تھے اور ایک ایک کرچھی کر کے منتر پڑھ کے کیا کرتے تھے, سواہا سواہا سواہا. پرنتو جب یگ پورا ہونے کو لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ساری کی ساری تھالی یا پرات جس میں وہ سمگری رکھی ہوتی ہے اس کو کھڑے ہو کر کے پوری کی پوری اس میں سواہا کر دیتے ہیں, سمپورن سواہا. کیوں, اب یگ پورا ہونے والا ہے. تو اسی پرکار سے پہلے براہمن, ہم کو پتا تو لگ گیا تھا پہلے ہی جس دن ہم براہمن بنے کہ اب یہاں سے لنگر اٹھنا ہے, مسافری شروع. لیکن کچھ سمے تھا, واسطو میں تو نہیں تھا پر براہمن سوچتے ہیں کہ سمے ہے. آپ دیکھیں گے تین پرکار کے کام کرنے والے ہوتے ہیں, ایک جو سمے سے پہلے کر دے, دوسرا جو سمے پر کر دے, اور تیسرا جو سمے پورا ہو جائے تب بھی اس کا کام ادھورا رہے, ہے نا. اب پہلے والے کی بھی ایگزامپل ہے, دوسرے والے کی بھی اور تیسرے والے کی بھی ہے. یعنی راجہ بن گئے, پرالبدھ مل گئی, کیونکہ سمے پورا ہوتا ہے تو جو جتنے کیا ہوتا ہے اتنا مل, لیکن ان کا تیر کمان پاس ہی رہا. یودھا تھے, یودھا رہے, انت تک یودھا رہے, سنسکار یودھا کے ہی رہے, وجے نہیں پائی. بڑے خوش کہ ہم یدھ کر رہے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوا کہ راجہ ہیں, سنگھاسن پر بیٹھے ہیں. بھکتی مارگ والوں کو یہ بالکل پتا نہیں کہ ایک راجہ سنگھاسن پر بیٹھ کے اپنا تیر کمان اپنے ساتھ کیوں لیے ہوئے ہیں. اپنے سیکورٹی گارڈ پر بھی وشواس نہیں ہے, کیونکہ سیکورٹی گارڈ کئیوں نے رکھے, انہوں نے اس کو مار دیا. تو اس نے اپنا تیر کمان اپنے ڈیفنس منسٹر کو نہیں دیا, راجہ نے خود ہی رکھا ہوا, پتا نہیں کب دشمن آ جائے. تو بابا کہتا ہے وہ تھرڈ ڈگری کے پرشارتھی ہیں, دوسری ڈگری کے. اب دیکھو کتنا دھوکہ ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ سنگم کا انت کب آئے گا, پھر بھی ہم بابا سے پوچھتے ہیں. آج بھی مرلی میں تھا جو سکار مرلی تھی, کہ بھائی بابا کہتا ہے بچے پوچھ رہے ہیں तुम्हारी बाबा जी आपकी पदरामनी कब तक रहनी है, हैं? बाबा कहते देखो कैसी बात पूछ रहे हैं। तो समय को जानने की कोशिश करते हैं, कहीं वैसे पूछेंगे, टीचर से जाके पूछेंगे, हमें तो पूरा निश्चय है पर जिज्ञासु को समझाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना का समय है, है? इसी प्रकार से कि मैंने अब कॉलेज ज्वाइन करना है, 3-4 साल का कोर्स है, थोड़ा बता दीजिए ना कितना समय है, करूं कि ना करूं। अच्छा, मेरे गांव में भैंस बेचनी है, अब बेचूं कि ना बेचूं, कुछ बता दीजिए। अच्छा, अब बाबा कहता है कि समय हमारे लिए कितना है, कितना समय है हर एक को पता है, वो कितना है, जब तक हम फोटो फ्रेम में नहीं चले जाते उतना ही समय है, ठीक है? किसी को पता है कि मेरा शरीर कब छूटेगा? आज भी एक आत्मा यहां आई थी हमारे इसमें शामिल होने, उसका हार्ट फेल हो गया। तो इसलिए ये एक सीधी बात है कि समय कितना है। तो वैसे हम मातेश्वरी जी का बताते हैं कि मातेश्वरी जी क्या कहती थी पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ किया कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात है जो शास्त्रों में भी लिखी हुई है, वो ये है कि हर व्यक्ति को पता है कि यहां किसी भी वक्त शरीर छूट सकता है, हर एक को पता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर व्यक्ति ये सोचता है मेरा नहीं छूटेगा। देखो आप, ये आश्चर्य की बात है। उसका भी कारण है, कारण ये है कि हम इसी दुनिया में रहे हैं, एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा ले लिया, तो सब कॉन्शियस में ये रहता है कि हम यही हैं, यही हैं, यहीं के थे, यही हैं, यहीं रहेंगे, चाहे ऊपर से हमें पता ना हो चोला बदला। तो वो जो डीप है बात, जिसके लिए लोग पुरुषार्थ करते हैं, यहां करते हैं, अगले जन्म में मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी, तो उस कारण से नॉर्मल ढंग से तो ठीक है, कल दुनिया ने चलना है, सतयुग से त्रेता आना है, एक शरीर से दूसरे में चले गए। पर जहां चढ़ती कला का सवाल हो, जहां पर एक ही ऐसा टाइम हो जिसमें हम कमाई कर सकते हैं और भगवान से जबरदस्त कमाई कर सकते हैं, उसमें फिर इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए पहले तो चलो कुछ युक्ति बताई जाती थी, अब तो सबको दिखाई दे रहा है। पहली बात कि शरीरों को छूटने के लिए भी बाबा ने कहा हुआ है, अकाल मृत्यु का बाजार गर्म हो गया है और तेजी से गर्म हो जाएगा, ठीक है? पहले कोई मुश्किल से कोई सोचता था कि अपशगुन गिना जाता था कि कोई वृद्ध आयु से पहले शरीर छोड़ दे तो अपशगुन गिना जाता था, आज तो इसको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है। बल्कि कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे वृद्ध आयु से पहले शरीर छुड़वा दो, मेरे बूढ़े हाल पता नहीं क्या हाल होगा, ये भी हो गया आज तो। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अकाल मृत्यु का बाजार गर्म हो रहा है, दूसरे विनाश की तैयारियां भी आप देखेंगे कि जो नॉर्मल चीज व्यक्ति कंट्रोल में कर सकता था, गवर्नमेंट कंट्रोल में कर सकती थी, अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे शहर पर एक तूफान आ गया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, लोगों के कितनी देर बिजली चली गई, जिसको बहुत शक्तिशाली गिनते हैं, हम रोज ही देखते हैं, तो कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट भाग दौड़ करती है, थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करती है, लेकिन हो भी जाता है और ये बढ़ता जाएगा। और बाबा ने यहां तक बताया है कि ये बच्चों के लिए रिहर्सल है, हमारे लिए रिहर्सल हो रहा है, जिस दिन रियल होगा उस दिन एक एक तत्व नहीं आएगा, अभी तो रिहर्सल में एक तत्व आता है, कभी पानी उछल गया, कभी तूफान आ गया, कभी अर्थक्वेक हो गया, कभी कहीं हो गया, लेकिन जब चारों तरफ से इकट्ठा ही अटैक होगा उसकी तैयारी बाबा कहता आपको करनी है। उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे को शरीर बचने वाले हैं या हमारे मकान बचने वाले हैं, लेकिन आत्मा की जो अवस्था है, अंत समय की जो अवस्था है, बाबा ने एक दिन दो दिन पहले भी कहा है कि बहुत बड़ा बहुत पावरफुल जिगरा दिल चाहिए जो ऐसे भयानक सीन को देख सके। कई व्यक्ति तो ऑपरेशन होता देखकर बेहोश हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये कैसे होगा, तो बच्चों को पहले से एक ही तरीका है कि अपने को मरा हुआ समझकर, ऑलरेडी मरा हुआ, अशरीरी का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें, और जो दैनंदिन घटनाएं होती हैं उनमें अनासक्त न्यूट्रल न्यारे रहने का अभ्यास करें। यहां तो क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो अगर भारत हार जाए बड़े दुखी हो जाते हैं। ये खेल है, स्पोर्ट है, ये एक टेस्ट है कि भाई हम कहां तक न्यूट्रल होकर चलते हैं। दूसरा हो गया है, उसका जीतना देखकर दुखी हो रहे हैं, तो ये छोटी बात में ऐसा है तो फिर लौकिकता कहां गई और बाकी चीजें कहां गई, फिर तो संसारिक ढंग हो गया ना। इसलिए पास विद ऑनर्स, पास तो सारे ही हैं। दो दिन पहले भी बाबा ने कहा जो पास होते हैं वो सज्जुग आ जाते हैं, जो फेल होते हैं वो त्रेता में आ जाते हैं। हम बाबा के घर में कोई बिना डिग्री लिए नहीं जाता है ना, अमीर घर से हर एक व्यक्ति प्रसाद का डोना लेके ही जाता, लेकिन क्वेश्चन वर्षे का है। इसलिए पास विद ऑनर्स मीन्स बिफोर टाइम, ठीक है, जितना ज्यादा बिफोर टाइम उतना ऑनरेबल। तो आप हमारे पूर्वजों को देख लो, हमारी मातेश्वरी जी हैं, मातेश्वरी जी का क्या पद है पता है आपको? पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण, लेकिन मातेश्वरी जी ने अपनी स्थिति को प्राप्त होने में कितना टाइम लगाया? आप में से बहुत से लोग तो उस समय जन्म भी नहीं लिया होगा ज्ञान का, है? तो कैसे किया, कैसे किया कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। यहां तक कि बाबा जब सर्विस की पॉइंट्स देते थे कि तुमको सन्यासियों को समझाना, उस समय ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी हम किसी को समझाने जाते हों, लेकिन उस सीन को इमर्ज करके बाबा ने कहा है, वाइब्रेशन के द्वारा उसको पूरा करके कंप्लीट किया। कोई भी बाबा की आज्ञा को ये नहीं समझा ये मेरे लिए नहीं है या भविष्य के लिए है या मेरे लिए कठिन है, क्योंकि भगवान है, ऑलमाइटी है, तो सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे कर करके मम्मा ने सबसे पहले पास विद ऑनर किया, हमारे आगे एग्जाम्पल है। अब कोई सोचते हैं, लंबी स्टोरी सोचते हैं कि हम विदेश ही नहीं गए, बाबा तो कहते हैं विदेश जाओगे तो चक्रवर्ती बनोगे, हमने तो सेवा ही नहीं की है, थोड़े से हमारे सेंटर के लोग हैं, पड़ोस में दूसरे ने सेंटर खोल लिया है, हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। अब सोचो कि ये ज्ञान वारिस बनाने का है। बाबा बार बार कहते हैं मेरे से वर्षा ले लो, भगवान प्रजा बनाने नहीं आया, ठीक है, और वारिस भी फर्क तो होता है, लेकिन वारिस मैंने वारिस तो हमारे टीचर्स को भी क्या कर रही है, वारिस बना रही है या प्रजा बना रही है? आप सोचो, प्रजा तो बाई प्रोडक्ट है, जैसे कोई ईंटे बनाता है, ईंटे के भट्टे वाला, तो फर्स्ट क्वालिटी की ईंटे भी होती हैं, सेकंड थर्ड भी होती हैं, फिर एक ऐसी भी होती है जिसको पैसे दे के फेंकवाना पड़ता है, स्टोन जैसी हो जाते हैं, बिल्कुल वर्थलेस, वो जगह घेरती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो है वारस, मुझे पहले तो वारस बनना है, मैं जो बनूंगा उसी तरह के बनाऊंगा, तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ कि मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है। असली सेवा हम अपनी करते हैं, अगर दूसरे भी की भी करते हैं या कोई परिस्थिति आती है उसको भी पार करते हैं तो अपनी सेवा ही करते हैं, क्योंकि प्रकृति को हमने जीतना है, विकर्मों को हमने जीतना है, स्वभाव संस्कार को हमने मिलाना है। और इसलिए बाबा कहता है कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी रचना है, जो रेजगारी होती है चेंज, वो भारी होता है, देखने में बहुत बड़ा होता है। आपको कोई 40 किलो चेंज दे दे तो आप कंधा उठा के कहोगे कोई मजदूर कलकुली मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन जो हाई डिनोमिनेशन के नोट होते हैं, है? भारत में तो शायद 1000 का ही है, तो वो हल्के होते हैं। इसलिए हमें वैल्यू देखनी है कि समय तो पुकार रहा है, हम अपने समय को सुबह से शाम तक हर एक के 24 घंटे खर्च हो जाते हैं, किस तरह की क्वालिटी में खर्च करते हैं। उसमें हमें साधारण है, बाबा कहते हैं साधारण का तो टाइम गया, थोड़ा सा उससे ऊपर है वो भी नहीं, हमारे यहां देखो विशेष, फिर विशिष्ट, फिर अष्ट है, क्वालिटीज तो है ना, एक अन्य एक अनन्य, ये दूसरों की तरह नहीं दूसरों से अलग थलग हैं उनके अंदर ही। इसलिए आप सोचो अगर आपका यही लक्ष्य प्रजा बनानी है, है? मेरे सेंटर में इतने स्टूडेंट हो गए जो मेरा हॉल भर गया है? अच्छा और भी ओवरफ्लो हो गया, बाहर भी लोग खड़े हैं, तो सोचो ज्यादा प्रजा राम जी की थी या नारायण जी की थी, यही सोच लो है? अगर सिर्फ प्रजा बनाने लगोगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रजा तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा इसलिए उसको प्रजा का भी पता नहीं कहां कौन मेरी प्रजा मर रहा है जी रहा है, इसलिए वहां तो राजा को कम से कम प्रजा का इतना तो ख्याल रहता है कि प्रजा सुखी रहे। तो हमें भगवान मिले और हम थोड़ा सा लेकर खुश हो जाए और वो भी डिले करते रहे, अभी टाइम पड़ा है अभी टाइम पड़ा है। कुछ दिन पहले बाबा ने शेर आया वाली एग्जाम्पल भी रिपीट की है, ये शेर आया आता तो है नहीं है, बाबा कहता था अचानक होगा, अचानक तो हो नहीं रहा है, एवर रेडी रहो, एवर रेडी। कोई सोल्जर हो आर्मी का और वो कहे हर वक्त चौकन्ना रहो और वो कहे भी मैं तो थक गया, एवर रेडी रह के दुश्मन तो आता ही नहीं, थोड़ा सो जाता हूं, है ना। इसलिए समय पुकार रहा है, अब तो परिस्थितियां भी बता रही हैं चारों तरफ की। और अगर आप देखें हमारे यज्ञ में भी जो अनन्य अनन्य थे ऊपर ज्यादा है, एडवांस पार्टी बढ़ गई है, अर्थात बाबा वहां से प्लानिंग करवा के नई दुनिया ला रहा है। तो जब इतने लोग वहां होंगे दिन रात कार्रवाई कर रहे हैं नई दुनिया की, तो इसको तो खाली करना ही पड़ेगा ना, ट्रेन को खाली करोगे तभी फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसलिए हर तरीके से समय की तो ये पुकार है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, चलो समय थोड़ा रह गया, अगर हम जिस स्पीड से चल रहे हैं अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से और उसी स्पीड से और ज्यादा कोशिश करें तो क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं या हमें अपना तरीका भी बदलना पड़ेगा। एक व्यक्ति टोंगे में जा रहा है, रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है, लेट हो गया तो कहता भी अब तो मुझे टोंगा छोड़ के टैक्सी करनी पड़ेगी नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता। और ये नहीं सिर्फ टोटल तौर पे हमें अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो तरीका बाबा ने तो सबको बराबर ज्ञान दिया है, सबको अपॉर्चुनिटी दी है, हमने अपनी अपनी समझ से किसी अपॉर्चुनिटी को भी मुश्किल मान लिया। एक भाई आए थे एक बार ब्रह्मा बाबा के पास अपनी कन्या को सरेंडर करने, बोले बाबा कि कन्या सरेंडर करता हूं पर ये मेरे ही शहर में रहे। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा ठीक है। अब वो तो सोच रहे कन्या का हित, कभी मेरे शहर में रहेगी, सुखी रहेगी, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन जो बाबा उसको बनाना चाहते हैं, बेहद में भेजना चाहते हैं, वो तो अपनी बुद्धि से हमने किया ना, कर रहे हैं कल्याण, लेकिन हो रहा है उन नुकसान। तो इसी प्रकार से तो हमें अगर लेटेस्ट समय को पहचान कर भी उसमें सफलता पानी है, क्योंकि अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे तो आलस और अलबेलेपन का कारण क्या होता है। ब्राह्मण है, रोज मुरली सुनते हैं, रोज अलार्म बजता है, आलस और अलबेलेपन का कारण क्या है? इसका कारण होता है निराशा और फेलियर। अगर आपको पूरी मेहनत करने के बाद भी, बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो क्या होता है? उमंग और उत्साह का कारण होता है सफलता, और आलस और अलबेलेपन का कारण होता है असफलता, निराशा। बाबा मुरलियों में कहते हैं, किसी दुकानदार का खूब बिजनेस चल रहा हो और दुकान बंद करने लगे तो कस्टमर कहे अच्छा मैं कल आ जाऊंगा, तो क्या करेगा वो? नहीं नहीं नहीं, लाओ आओ आओ, क्योंकि कमाई हो रही है। और किसी कोई दुकानदार उबासी ले रहा हो तो क्या समझा जाए? ऐसे ही बाबा ज्ञान में भी कोई उबासी ले ले तो बाबा कहते हैं कि इसका ध्यान और तरफ है। उबासी आती जब है आपको ध्यान और तरफ है, आप कोई अपनी रुचि का कार्यक्रम देखते हैं उबासी नहीं आती। एक बार पटना शहर में एक बाबा का बच्चा ज्ञान में आए थे, उसका नाम था जिलान बाबू सेठ। उस समय बहुत बड़े वो शहर के माननीय रईस थे, बहुत बड़ा उनका बंगला था और नदी में खुलता था। अच्छा, वहां दादी प्रकाशमणि जी को टीचर रखा गया था, पहले और बहनें थी, तो उन्होंने प्रबंध किया कि ब्रह्मा बाबा यहां आए। अब ब्रह्मा बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि वहां भी जाना है, एक जगह और जाना था। तो ब्रह्मा बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि रात को, क्योंकि उसकी नदी थी, खुलता था उसमें, और नाव थे बड़े बड़े, कि उसकी शाम को उसकी नाव में बैठकर सारे ब्राह्मण योग लगाएंगे और बाबा दृष्टि देंगे। और जैसे पहले पहले तार बांध के ना, रस्सी बांध के ऐसे योग लगवाया जाता था, रेशम का धागा, वो प्रोग्राम था। सारा कुछ हो गया, सेट हो गया, ब्रह्मा बाबा आ गए, फिर वो जिलान बाबू भी आया और उसने आकर के उबासी ले ली। अच्छा, नेचुरल ले ली। बाबा ने कहा बच्चा थका हुआ, प्रोग्राम कैंसिल। तो ये क्योंकि सीधी बात है, इसलिए अब हम अगर देखें, आप यात्रा कर रहे हैं, मान लो आपकी एक यात्रा जा रही है, कोई 20 मार्च जा रहा है, अच्छा उसमें अचानक आपका बूट का तस्मा खुल गया, आप बाहर आके बांधने लग गए, तो क्या होगा? दो चार रोज आगे चली जाएंगी, फिर आप उसमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, थोड़ा आगे गए, आपका पैर मुड़ गया, आप फिर बाहर निकल आए। अगर आप अगली रो से धीरे धीरे चौथी में आ गए, धीरे धीरे आठवीं में आ गए, तो फिर कई तो निराश होकर कहते हैं भाई चलो वापस ही चलते हैं, कई कहते हैं जिस रो में आ गए उतना ही ठीक है। तो ये है निराशा। तो इसलिए अपने डेली पुरुषार्थ में कोई ना कोई नियम को तोड़ना, साधारण नियम को तोड़ना। मान लो क्लास में जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया तो दो मिनट उससे बात कर ली, कोई बात नहीं, क्लास में लेट हो जाएंगे, तो वैल्यू किसकी हुई? क्लास की हुई या दोस्त की हुई? ऐसे ही अखबार भी आ गया, मुरली भी आ गई, तो चलो पहले अखबार पढ़ लेते हैं फिर मुरली पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारी बातें धीरे धीरे बताती हैं महत्व कितना देते हैं, और फिर हमको देखकर दूसरे भी इसी तरह करते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर इनडायरेक्ट बोझ चढ़ जाता है। जैसे हमको देख कोई आगे बढ़ता है तो उसका हमें आशीर्वाद के रूप में शेयर मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख के और करेंगे। ब्रह्मा बाबा तो भक्ति मार्ग का भी सुनाते हैं कि सबसे पहले चंदा लेने वाले मेरे पास आते थे, ये बाबा ज्यादा देगा तो उसको देखकर दूसरे भी ज्यादा देंगे, और बाबा देता था ज्यादा क्योंकि उसका भी शेयर जमा हो जाता है। तो ये कर्मों में भी लागू होता है, आज की गीता में भी ये लिखा हुआ है। इसलिए अपने कर्म पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैगर हो, सेवाधारी हो, यहाँ तुमको कोई नाम मान शान की जरूरत नहीं है, मेरा तेरा कर इतना बड़ा भगवान का सागर, अब सागर में कोई हिस्से डाल सकता है कोई समुन्द्र में? बाबा कहता आजकल तो कलयुग में सागर में भी हिस्सा डाला हुआ है, ये हिंद महासागर है, ये दूसरा है, मेरे में ना आ जाओ। लेकिन बाबा के इतना बड़ा था ज्ञान का खजाना, हम कहें कि मेरे पड़ोस में दूसरा सेंटर खुल गया, ये जिज्ञासु वहां चला गया, वो वहां आ गया, कन्फ्यूजन कितना लिमिटेड है। अगर हम अपनी बुद्धि से ये बात निकाल दें तो सेंटर ही खत्म हो जाएगा, हमने देखा है खुद। आप बुद्धि से निकाल दो कोई भी समस्या तो खत्म हो जाएगी, और बुद्धि में उसको पालना करते रहो कि समस्या आ गई वो और कड़ी होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी और ज्वालामुखी, इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। दो तीन दिन पहले अंतर्मुखी की मुरली आई थी, आप सबने सुनी है कि अंतर्मुखी सिंपली मीन्स कि हम आत्म अभिमानी होकर के रहें, दुनिया में चलें, गृहस्थी हैं तो अपनी ड्यूटी करें, अगर ज्ञान में है तो अपनी ड्यूटी करें, जो मर्जी करें, चारों तरफ जो मर्जी होता रहे, पर मैं अपनी कुटिया में विराजमान हूं। साधु लोग वैसे कुटिया में जाते थे, अपने अंतर्मुखी हूं, मुझे अपना लक्ष्य है। तो हमेशा ज्वालामुखी जो फटता है ना ऊपर से, अंदर उसके बहुत जमा हुई अग्नि होती है। आपका भी कभी प्रेशर कुकर फटता हो तो कितनी उसमें गैस जमा होती है, उतने जोर से फटता है। तो जिसका पहले ही ढक्कन खुला है वो ज्वालामुखी क्या बनेगा? इसलिए अंतर्मुखी मीन्स हमें अपने अंदर ऐसी ताकत भरनी है जिससे कि, अब बाबा कहता आत्म बम तो आपने पिछले फोड़ दिया था, है ना? जब आपने प्लेटिनम जुबली मनाई थी तो कौन सा बम फोड़ा था? बाबा ने खुद कहा है कि बच्चों ने आत्म बम फोड़ने में सफलता पाई, दुनिया को पता लगने लग गया है आत्मा शरीर से अलग चीज है। अब कौन सा फोड़ना? बाबा ने आपको ड्यूटी दी हुई है परमात्म बम, कि परमात्मा का परिचय लोगों को मिले, और वो इतना परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, आत्मा को ही लोग मुश्किल से समझे हैं, तो उस परमात्म बम फोड़ने के लिए आपको कितना अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जब किसी चीज में टाइम कम रह जाए और अब हमें पता लगे, हम जागृत हों, अरे टाइम तो कम रह गया, तो उसमें क्या करना चाहिए? कोई नया फार्मूला? तो नया फार्मूला क्या हो सकता है कि आगे अब तक हम आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं कि दिन में जितना टाइम आत्म अभिमानी रहेंगे हमारी लाइन क्लियर रहेगी, हमारी कमाई अविनाशी होगी, हमें अपनी पढ़ाई और प्राप्ति का ध्यान रहेगा, और जो ही आत्म अभिमानी भूले तो फिर दुनिया का शुरू हो जाएगा। परंतु यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, हम पहले से परमात्म अभिमानी का अभ्यास शुरू कर दें तो कैसा रहेगा? क्योंकि आत्म अभिमानी में फिर भी बॉडी शरीर ये वो खतरा है, परंतु अगर हम जो बाबा आजकल कह रहे हैं कि आप सीधा ही परमात्म अभिमानी बन जाओ तो क्या होगा? इसको बाबा ने साधारण भाषा में कहा है मेरे को तेरा कर दो। अब मेरे को तेरा बात वही है, मेरा कहोगे तो कभी आत्म स्वरूप से मेरा, कभी शरीर स्वरूप से मेरा। अगर तेरा हो गया तो परमात्म स्वरूप से हो गया, تو تیرے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایک تو کمزوری نہیں رہے گی. میرا کہیں گے میرا شریر کمزور ہے, میں تو سیڑھی نہیں چڑھ سکتا, میرے پاس دھن نہیں ہے, میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, میں نے تو یہ کیا تھا میں ہار گیا تھا, اب میں دوبارہ 100 باری تو ہار گیا, اب کہاں جیتوں گا, تو میرا آئے گا. تو میرے کی تو بہت سوکشم پریبھاشا ہے نا, کہ میرا سفلتا میں بھی میرا لمٹ لگا دیتا ہے. جس دن میں نے کہہ دیا میں نے سفلتا پراپت کر لی, بابا کہے گا تتھا استو, وہیں تک رہے گی. جس دن میں نے کہہ دیا میں نے اتنا بڑا مکان بنا لیا ہے, 6 منزل کا بنا لیا, اس کے زیادہ تو اتھارٹی الاؤ نہیں کر دی, تو میری تو سنتشتتا ہو گئی ہے, تو ختم. تو بابا کہتا ہے یہاں تم نے مکان تھوڑی بنانے ہیں. اس لیے اگر کہہ دیں تیرا ہے, ایک تو کمزوری ختم. بابا نے خود کہا ہے کہ تم تیرا کہو میں تمہارا سب فالتو بسم کر دوں گا, یہاں تک بھگوان. جب ہم میرا کہیں گے تو میرا رکھنے کی فالتو کی بھی مارجن ہے, اچھا تیرا کہیں گے تو بسم. تو آج کل بابا نے بہت شارٹ کٹ فارمولا منمنا بھاو کا 2-3 مرلیوں میں ریپیٹ کیا ہے, اور وہ یہی ہے کیا کہ فکر مجھے دے دو فخر لے لو, فکر مجھے دے دو فخر لے لو. اور کتنی بابا خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو چنتا جو فکر ہے میں کیسے پرشارت کروں گا, کیا کیا یہ ہے وہ ہے, سب مجھے دے دو فخر لے لو. اب بتاؤ, پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر فخر رکھو گے تو سب چنتائیں دور, آتما چمکے گی, میں اور بابا چھٹی. اور اگر فکر رکھو گے تو کتنے سارے فکروں کے ٹوکرے چنتاؤں کے روز رہیں گے. تو ہر وقت آپ دیکھ لیجیے ہم فکر مند ہیں یا فخر فارغ ہیں, فکر سے فارغ ہیں, بے فکر بادشاہ ہیں یا بادشاہ بھی نہیں اور انیک فکریں لیے ہوئے ہیں. شہر کی فکر میں کاجی دبلے, یہ ہو جائے گا وہ, میں ہی یگ کو چلا رہا ہوں جیسے, ہے نا. اس لیے بابا کہ اب کیا ہوگا, ایسے کیسے ہوگا. تب بابا کہتا ہے کہ شارٹ کر دیا ہے کہ پرماتم ابھیمانی رہو, یعنی تیرا ہی ہے, ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. بابا تو کہتا ہے بابا نے کبھی نہیں کہا کہ پورے پہلوان بن کے تاکہ تمہارا شریر ہاسپٹل جائے نہیں, پورے دھنوان بن کے تاکہ تبھی تمہیں پیسے کی شارٹیج ہی نہیں آئے, پورے گنوان بن کے میرے پاس ہو. یہ ہسپتال ہے یا کوئی ہیلتھ کلب ہے؟ ہسپتال میں تو مریض ہی آتے ہیں. تو بابا کہتا ہے جو آئے واہ واہ, لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, نازک سے نازک مریض بھی ڈاکٹر کا کہنا مانتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, اتنے نازک نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, ہم اپنی مرضی سے چل پڑتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, بھگوان کی شریمت جسے ہمیں آنکھ بند کر کے اس پہ چلنا چاہیے, تو ہم اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں اور اپنی مت کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں. اگر تو بابا کی شریمت اور میری مت ایک جیسی ہے, مان لو بابا کہتا ہے بچے کھاؤ پیو موج کرو جاؤ گھومو پھرو, یہ تو کرم یوگ ہے, بس مجھے یاد کرو, اتنے خوش ہوتے ہیں, واہ یہ تو ہمارے دل کی بات بابا نے کہہ دی, کھاؤ پیو یہی تو ہم کرنا چاہتے ہیں. جو دوسرا حصہ ہے مجھے یاد کرو, وہ گم کر دیتے ہیں. اچھا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, شام کو کھاؤ پیو موج کرو ہو گیا, مجھے یاد کرو گم ہو گیا. اچھا اس لیے اپنی مرضی ہے. اچھا ہمارے پاس او آر سی میں بہت پارٹیاں آتی ہیں, کوئی مدراس سے آ رہی ہے, کوئی کرناٹک سے آ رہی ہے, کوئی آسام سے آ رہی ہے. ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, ہم نے یہاں کلاس کرنا ہے پھر آگرہ دیکھنے جانا ہے, یہ ان کا پکا ایجنڈا ہوتا ہے. اچھا ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, بابا نے کہا نا موج کرو. ایک راجہ تھا کوئی, اس نے اپنی پتنی کے منہ میں ایک مقبرہ بنا دیا, اس کو تاج محل کہتے ہیں, وہ جانے اس کا کام جانے, ہمیں تو کچھ لینا دینا نہیں. اب تم بی کے ہو کر کے برہمن ہو کر کے سنگم یوگ کو سمے کو دیکھتے ہوئے تمہیں کیا ہوا ہے کہ آتے ہی کہیں گے ایک کلاس کرنی ہے پھر ہمیں آگرہ دیکھنے جانا ہے, اب کیا کیا جائے. تو ہم بھی وہی کہتے ہیں جو بابا کہتے ہیں, اچھا بھی جاؤ مرلی ریپیٹ کرتے جانا, آپس میں گیان چرچا کرتے جانا, چھٹی. لیکن انٹینشن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ لمبا رستہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے بابا کو یاد کرنے کا لمبا رستہ بھی ہے، لیکن یہ جو انترمکھی والا ہے، بیج روپ والا ہے، پاور فل والا ہے، وہ تو پھر نہیں ہوتا نا. اس لیے میرے سے سو، کیونکہ جتنے دنیا کے جھگڑے ہیں میں میرے سے ہی ہوتے ہیں، میں میرا میں میرا. تو بابا کہتا ہے میں بے حد کا بابا، بادشاہی بے حد کی، خوشی تمہاری بے حد کی، گیان تمہارا بے حد کا، اور سب ہلکا کرنے والا. تم اپنے کو بھاری کر کے میں آ کر کے کہ چھوٹا میں ہے، اور ساتھ اس کو میرا اور جوڑ کر کے یہاں بیٹھے ہو، اڑو گے کیسے؟ کیونکہ اپنا گیان جو ہے بابا کا اتنا ونڈرفل ہے، اتنا بڑھیا، ہم سب جانتے ہی ہیں، اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ گھاٹا کروانے والا تو ہے ہی نہیں، اور اتنی پراپتی کرانے والا ہے، اتنی پراپتی کرانے والا ہے. آپ اس کی پراپتی کو سوچ کے نہ خوش ہو سکتے، اگر ہو جائے پراپتی تو کہنا ہی کیا. دنیا کے لوگ دینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ دینے سے کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کسی کو اپنی شال دے دیں گے تو آپ کے پاس تو نہیں رہے گی، دو ہیں تو ایک رہے گی، آپ کیوں دیں گے؟ اچھا، ہم چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہیں، ہمیں پہلے پڑھایا گیا تھا کہ لینے میں فائدہ ہے، دینے میں گھاٹا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹینسی کا پہلا لیسن یہ ہوتا ہے، دنیا کا لیسن ہے. پرنتو ابھی ہم چارٹرڈ اکاؤنٹینسی چھوڑ کے گیان میں کیوں آ گئے؟ ہم نے کہا یہ تو الٹی بات کہہ رہے ہیں، دینے میں فائدہ ہے، لینے میں گھاٹا ہے. کیسے؟ آپ کا بزنس ہی ایسا ہونا چاہیے جو دینے میں بڑھے. تو بابا نے ہم کو بزنس ہی دوسرا سکھایا ہے. گلزار دادی ہمیشہ کہتی ہے خوشی جو ہے یہ ہمارا بزنس ہے، خوشی کا. اور لوگ غم کا ویاپار کرتے ہیں، ہم خوشی کا. خوشی دینے سے بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے بتاؤ؟ اچھا، گیان دینے سے بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ آپ کا آپ کے پاس رہا، دوسرے کو بھی کچھ مل گیا. اسی لیے دنیا میں ہر اندھکار کو دور کرنے کے لیے ہر فنکشن میں موم بتیاں جلاتے ہیں یا دیپک جلاتے ہیں. کیوں؟ کہ ایک اپنا تو ایک دیپک جو جلاتا ہے اس کا تو گھٹتا نہیں، دوسرے کا بڑھ جاتا ہے. اگر اس کمرے میں ہی سارے بھائی بہن کینڈل لے کے کھڑے ہو جائیں، اتنی رونق ہو جاتی ہے. تو ہمارا بزنس گیان کا ہے، گیان لو گیان دو، وہ بھی بڑھنے کا ہے. اچھا، یوگ جو ہے، یوگ کا مطلب ہوتا ہے سہیوگ. کیونکہ جو ویکتی یوگی نہیں ہے وہ ویگن بنے گا، دوسرے کے سہیوگ کھینچے گا کہ مجھے مان ملے تو میں سہیوگ دوں. لیکن یوگی جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، مولڈنگ ہوتا ہے، دوسرے کو سہیوگ دیتا ہے. اب سہیوگ دو گے تو آپ کو سہیوگ کے ریٹرن میں کیا ملے گا؟ ویگن بنو گے تو ویگن ملے گا. تو سہیوگ دو گے سہیوگ ملے گا، تو یوگ سے بھی وردھی ہوتی ہے. اور یوگ شبد کا تو ارتھ ہی یہ ہے، جوڑنا، بڑھانا. اچھا، تیسرا ہے دیوی گن. اب دیوی گن بھی جو ہیں، یہاں تک کہا گیا ہے، ایک بہن ابھی سنا رہی تھی شیر، کہ چندن جو ہوتا ہے، چندن کے ورش کو جو ٹاکوا کاٹتا ہے اس میں بھی وہ خوشبو چھوڑ جاتا ہے. اس کو مارنے کے لیے جو آتا ہے لوہے کا وہ ایکس، اس میں بھی چندن خوشبو چھوڑ جاتا ہے. کتنا گنوں کی مہما کہی گئی ہے. اچھا، اس کو بھی چھوڑو. آپ کے پاس ایک گلاب کا پھول ہے، اصلی والا، آپ اسے خوشبو لو، زور سے کھینچو، چاہے آپ پرانایام کرتے ہو، جتنا چاہیے کھینچو، اس کی پھول کی خوشبو کم ہوگی؟ کم ہوگی کیا؟ نہیں. آپ نے بھی لے لی، دوسرا بھی لے سکتا ہے. اس لیے گن بھی جو ہیں وہ بھی دینے سے بڑھتے ہیں. اور چوتھا سیوا ہے، سیوا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس لیے ہمارا بزنس وردھی کرنے کا ہے. اور اس سب سوکشم چیزوں کو چھوڑ کر ہم اس میں آ جائیں، یہ صوفہ ایسا ہے، اس کا کپڑا ایسا ہونا چاہیے، تو پھر بابا کہتا ہے تمہاری قسمت. اس لیے ہمیں اب میرا نہیں تیرا، من سے اگر ہم کرتے ہیں، جب من بھی تیرا ہو گیا تو پھر دوسرے کی چیز کو ویسے بھی ویکتی سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی کو جیسے مرضی چلا لے. آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ میرا ہے، آپ کہیں گے اچھا اتنا یگ میں دے دو، اتنا یہ کر دو، اپنے سسٹم سے چلائیں گے. آپ نے کہہ دیا بابا کا ہے تو سوچنا پڑے گا بابا ایسے کرتا. اس لیے کوئی بھی چیز ہے سنسکار ہی ہے. اچھا بابا کو پرانے سنسکار دے دیے، دھوبی کو اپنے پرانے کپڑے دے دیے، وہ کیا کرے گا؟ پرانے رکھے گا کیا؟ وہ تو پہلے ٹھیک کرے گا. ڈاکٹر کو پیشنٹ دے دو انٹینسو یا اس میں ایمرجنسی میں، تو ڈاکٹر کھڑا رہے گا، چائے پیے گا، وہ پیشنٹ کو فٹافٹ اٹینڈ کرے گا. اس لیے بابا کہتا ہے میرے حوالے کر دو، جیون کی نیا چھوٹی سی کر دے رام حوالے. اوم شانتی.